وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غضبناک ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غصہ تو جائز غصہ ہے اور ایک ناجائز ہے۔ دیکھیں غصہ انسان کے نا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ کبھی آتا ہی نہیں ان کو، غصہ کبھی ان کے اندر غصے کی چانس ہی نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ غصہ جب آتا ہے اس کا مطلب غصہ ان کو بھی آ جاتا ہے تو تب وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو غصہ ایک ہے جائز اور ایک ناجائز، میں نے آپ کو بتایا۔ جائز غصہ کون سا؟ جب دین کے اوپر کوئی بات آئے، جب اللہ اس کے رسول کے اوپر کوئی بات آئے تو اس وقت غصہ ہونا اس بات کا، اس جس کو کہتے ہیں غیرت، حمیت، غیرت ایمانی، یہ ہونی چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو کہ بس اللہ رسول کی کوئی بات بھی ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کہتے رہیں جو مرضی، ہمارے رسول کو کچھ کہیں ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا۔ دوسرا غصہ کون سا ہے؟ جو انسان کی اپنی ذات کی کوئی بات ہو، کوئی اس طرح کی بات ہو، مجھے اس کے اوپر غصہ آ گیا، اس نے ایسے کیوں کیا، مجھے غصہ آ گیا، وہ غصہ ناپسندیدہ ہے، وہ برا ہے۔ اس لیے کہ اس غصے کے اندر اکثر اپنی انا کا ہاتھ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے چاہا تو ویسا کیوں نہیں ہوا، الٹ کیوں ہوا، یہ غصہ ناپسندیدہ ہے۔ تو ایک غصہ جو ہونا چاہیے، بعض دفعہ وہ غصہ تو نہیں ہوتا، یا اللہ کی حدود کوئی توڑ رہا ہے تو اس چیز کے اوپر غصہ ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا نہیں ہے۔ جی مثلا کہ ایک باپ ہے، اس کی بیٹی بے حیا لباس پہن کے جا رہی ہے، اب اس کے اوپر اس کو کوئی غصہ نہیں آ رہا، نہیں جی بڑے ٹھنڈے مزاج کے، اس چیز پہ تو غصہ آنا چاہیے۔ جب غصہ کس بات پہ آ رہا ہے کہ آج میری پسند کا کھانا کیوں نہیں بنا، حالانکہ اس پہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ تو بات غصہ آنے کی نہیں ہے، بات ہی یہ ہے کہ غصے کو چینلائز کیسے کیا جاتا ہے، کیسے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ اگر یہ ایسی چیز ہوتی جو آنا ہی نہیں چاہیے تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے، لیکن غصہ آتا تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں کبھی ایسے آتا تھا۔ اگر کوئی گردن میں چادر ڈال کے اور کھینچ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اس کو تھپڑ نہیں مار رہے، تو غصہ ان چیزوں کے اوپر نہیں آپ نے کیا۔ غصہ جہاں پہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں، جہاں پہ اللہ کے دشمن کوئی ایسی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی غصہ کیا ہے تو کیا ہے، ورنہ نہیں کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہم کن چیزوں پہ غصہ کرتے ہیں۔ غصے کو آگ کہا گیا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، غصہ آئے تو، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، اعوذ باللہ پڑھو۔ تو یہ چیزیں، کیونکہ غصہ آگ ہے نا، اس کو بجھانے کے لیے پانی، وضو کرو۔ اب ہم دیکھیں کہ جو ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی کوالٹی تو ہے کہ ہم یغفر ہوں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ خوشی میں معاف کرنا تو آسان ہے، چلو جی آج میں بہت خوش ہوں، جاؤ تمہیں معاف کیا، یہ اس طرح کہتے ہیں نا لوگ، آج میں بڑی خوش ہوں، جا تجھے معاف کیا، تو بھی کیا یاد کرے گی، یہ تو چلو آسان ہے۔ پتہ تو تب چلے جب غصہ ہو تو معاف کر دے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں والکاظمین الغیظ، غصے کا گھونٹ پی جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں غصے کو، یعنی غصہ آتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں آتا، آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، جو سب سے اچھا گھونٹ ہے نا، کڑوا گھونٹ پی جانا، وہ غصے کا گھونٹ ہے جو انسان پی جاتا ہے، اور یہ ہے اصل بہادری۔ یہ جو غصہ ہے، جس وقت اس بات کے اوپر غصہ انسان کو ہو، اور وہاں پہ بھی دیکھیں آل عمران میں بھی یہ کس کی کوالٹی بتائی گئی ہے، جنت میں جانے والوں کی، کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر غصے کو لے کر، اور اس کے بعد اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ غصے کو لے کر اگر گھر میں پلیٹیں ٹوٹ رہی ہیں، اور بچے دبکے میں کہ آج ماں کو غصہ آ گیا، اور شوہر کہہ رہا کہ میں گھر آج کیوں آ گیا، میری غلطی ہو گئی، آج میں گھر آ گیا، کہ یہ آج تو بیگم کا موڈ ہی بہت خراب ہے، تو پھر تو ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب غصہ اتر جائے تو پھر کہنا کہ او ہو مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں تو اس وقت غصے میں تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کئی مرد غصے میں طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر عورتیں کہتی ہیں نہیں جی غصے میں تھے، ایک تو اس لیے طلاق دے دی، अब होश आया तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था। तो इसका मतलब गुस्सा क्या चीज है, एक नशा है जो कर लिया तो अकल ही जाती रही। मैंने आपको बताया ना चैनलाइज कैसे आप उसको करते हैं, अकल ऐसी हो गई कि बिल्कुल माउफ हो गई, आपने गुस्से को क्या दबाना था, गुस्से ने आपको दबा लिया। अब क्या है, जब अकल माउफ हो गई तो फिर पता ही नहीं कि मुंह से क्या बोल रहे हैं, तलाक कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कुछ नहीं पता, बिल्कुल पागल हो गए। एक जगह मैं पढ़ रही थी, बड़ी जबरदस्त बात थी कि जब इंसान गुस्से में होता है ना तो शैतान उसके साथ कैसे खेलता है, जैसे आपके बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं ना, गेंद को किक लगाते हैं, इधर फेंका उधर फेंका उधर फेंका, इस तरह शैतान इंसान के साथ खेलता है। टोटल इंसान उसके हाथ में आ जाता है क्योंकि वो गुस्से में बावला हुआ पड़ा, पागल हुआ पड़ा, उसको तो कुछ नहीं पता चल रहा वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। अब शैतान उसके साथ खेलता है, फिर उससे वो काम करवाता है कि फिर जो उसने नॉर्मल हालात में कभी किया ही ना हो। इसलिए गुस्सा एक बुरी चीज है कि जब इस तरह की उसमें किया जाए। मैंने आपको बताया एक जायज गुस्सा भी है, वो नहीं, तब गुस्सा बुरी चीज है जब इंसान गुस्से में पागल हो जाए। देखें गुस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आया, लेकिन क्या आपने गुस्से में ऐसी हरकतें की, क्या आपने गुस्से में कभी किसी से ज्यादती की थी, जुल्म किया कभी किसी के ऊपर? तो इसलिए गुस्से के आलम में फिर जब वो उसका ऐसे ही है जैसे अब नशा था, वो नशा जब टूटा खत्म हुआ तब इंसान नादिम होता है कि हाय ये मैं क्या कर बैठा, वो गुस्सा हराम है। फिर एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना किया कर, क्या फरमाया गुस्सा ना किया कर। उसने फिर पूछा, आपने फिर यही फरमाया, फिर पूछा आपने यही फरमाया, ये बुखारी की हदीस है। एक शख्स ने आपसे आपके पास आया तो आपने फरमाया गुस्सा ना कर तो तू जहन्नुम का गुस्सा ना कर तो तू जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा, यानी ये अमल क्या जन्नत तक पहुंचा देगा गुस्से का कंट्रोल करना। इसीलिए कि गुस्सा आ तो जाता है, गुस्सा पी जाना क्या कि कंट्रोल करो, यानी कैसे अब आप उसको चैनलाइज करेंगे, कैसे अब आप उसको करेंगे। एक ये सच्ची बात है, आप कुछ यकीन नहीं आएगा कि एक कपल था, उनकी सिर्फ लड़ाई किस बात से शुरू हुई कि आज तुमने ये क्यों पकाया, ये जो भी वो चीज थी खाना आलू थे या जो भी, ये मुझे पसंद नहीं है, तुमने ये क्यों पकाया, इतना वहां से बात शुरू हुई, जो गुस्से पे गुस्सा जो भी था, बहस तकरार और लड़ाई जो शुरू हुई कि आप यकीन करें कि तलाक तक नौबत आ गई। और जब बाद में पूछा यानी गया कि आपकी क्या बात शुरू क्या हुई है, तो बस उन्होंने कहा, जी बेगम ने कहा बात शुरू असल में इससे हुई थी कि मैंने आज ये चीज क्या पका ली, शुरू इससे हुई और कहां तक नौबत पहुंच गई, ये करता है गुस्सा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया कि जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा अगर तू गुस्सा ना कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया जो बंदा हक पे होने के बावजूद गुस्सा छोड़ दे, यानी झगड़े को छोड़ देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए बशारत देता है घर की। हक पे है लेकिन, यानी आपकी बात ही सही है लेकिन आप स्टैंड क्यों नहीं लेते कि बहस होगी झगड़ा होगा आगे बात बढ़ जाएगी तो आपने हक भी की भी बात आपने छोड़ दी, अपना हक छोड़ दिया। उस वक्त अल्लाह ताला की खातिर जो इंसान ये करता है अल्लाह ताला उसको बशारत देता है जन्नत में घर की। ये वो तरीका है जिससे इंसान अवॉइड कर सकता है लड़ाई झगड़े को फसाद को। यकीन करें दुनिया में कई झगड़े 99% झगड़े इस तरह खत्म हो सकते हैं अगर इंसान गुस्सा ना करे। गुस्सा ना करने का मतलब क्या, ये नहीं कह रही गुस्सा कभी आए ही ना उसको, मतलब गुस्से को पी जाए, आए तो पी जाए। और अगर हम ये करें कि गुस्सा आए और बस अब जब तक मैं जवाब ना दे लूं इसको तब तक मेरी चैन नहीं, फोन उठाया उसको बुरा भला उसको ये जब तक कह नहीं दिया अपना सारा गुबार नहीं निकाल लिया उस वक्त चैन से नहीं बैठे, उसके बाद में पछताया आया मैंने क्या कर दिया, फिर तो इस क्वालिटी से तो हम फिर फारिग हैं। वो क्या करते हैं, वो तो गुस्से में माफ कर देते हैं। ये बहुत हौसले की बात है, गुस्से में माफ कर देना, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हमें शादी पे बुलाया कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ये नहीं कि फोन उठा के उनको तड़तड़ सुना रहे हैं अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी ऐसे हो गया वो हो गया, ये नहीं। अच्छा अगर आज मेरी मर्जी का काम नहीं हुआ तो ऐसी क्या क्यामत आ गई, आज और ने हमारी कोई हमारी एनिवर्सरी भूल गए तो क्या ऐसा मसला हो गया, हमें जो तोहफा नहीं दिया तो क्या हो गया, कोई और मेरी मर्जी के खिलाफ बात कर दी तो माफ कर दे, जाने दे, कोई नहीं। अगर इंसान ये याद रखे फमा होती तुम इन शहीन फमता हयात दुनिया, सब इन चीजों ने खत्म हो जाना, फिर क्या हुआ, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलो जाने दो। इंसान कहता कब तक, मेरी तो बड़ी हो गई, अब नहीं मैंने जाने देना, नहीं जाने दो, कब तक, जब तक हम जन्नत में नहीं पहुंच जाते, हमारी मंजिल तो वो है ना, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन अगर हमारे घरों में प्लेटें टूटती हैं, बेलने चलते हैं, चीखों पुकार होती है, हमसायों तक आवाजें जा रही हैं, तो कम अज कम हम इस आयत में शामिल नहीं है फिर। ये हौसला मंदों का काम है, ऐसे लोग फिर अगर जन्नत में भी पहुंच गए तो वहां का भी माहौल खराब कर देंगे, इसलिए ये नहीं जन्नत में जा सकते, फिर यहीं बैठे। जन्नत का माहौल तो बहुत पुरमन और पुरसकून है। तो ये एंगर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, सबके लिए, औरतें हैं या मर्द हैं। इफ यू सी वॉन्ट हेल्प, तो इसके लिए जाके वाकई हेल्प लें आप, एंगर मैनेजमेंट की जगह जाएं, वहां पे किसी से जाके ये क्लासें लें, क्योंकि आपको पता चले किस तरह इसको मैनेज करना। तो गुस्सा आएगा लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए, जैसे एंगर मैनेजमेंट के इतने सेशंस होते रहते हैं। मर्दों में चीज ज्यादा होती है, औरतों में कम होती है, लेकिन औरतें भी खैर कोई कम नहीं है, जो हैं वो बहुत ही खूनखार भी हो जाती हैं, बच्चे तक उनके उनसे डरते हैं, खानदान तो पनाह मांगता है। अगर मैं उनमें से हूं जिसको छेड़ने से लोग डरें कि नहीं भाई इसको छेड़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर सोच ही लें कि मेरा क्या अखलाक है और क्या किरदार है, फिर छोड़ दे सारी बातें, छोड़ दे मैं किस पारे पे पहुंची हुई हूं, किस पे पहुंची, मेरी जुबान ही कंट्रोल में नहीं है, अगर मुझे गुस्से में यही नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, फिर मैं क्या सीख रही हूं, क्या वाकई मैं जन्नत के पाकीजा माहौल में रहने के काबिल हूं। जन्नत की जो रेजिडेंट है ना, उसकी सिटीजनशिप, उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है, सबको नहीं मिल जाती। आप इस मुल्क में आए, आपको सिटीजनशिप मिली, कोई कोई उन्होंने देखी ना आपके अंदर कोई चीज देखी, आप वो आपका पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका ये तो नहीं है, आप क्रिमिनल तो नहीं है, फलां तो नहीं, कुछ चीजें देखी, कोई एलिजिबिलिटी के लिए कुछ बनती है ना चीजें। जन्नत की भी ऐसे ही नहीं कि हर एक ऐरा गैरा उठ के चल पड़े वहां, उसके लिए भी एलिजिबल होना जरूरी है, और ये वो चीजें चेक की जाएंगी वहां की सिटीजनशिप देने से पहले। क्या मैं ये रखती हूं अपने पास, क्या मैं ऐसे कहती हूं मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर, गुस्सा आएगा ठीक है ना, यहां तक ठीक है बात, गुस्सा आ गया उसके ऊपर, अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको नोट करें, उसको नोट करें कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैं खामोशी से होके एक तरफ बैठ जाती हूँ, वुजू करती हूँ, औज़ुबिल्लाह पढ़ती हूँ, अपने आप पे वर्क करती हूँ कि मैंने इसको इस तरह से नहीं निकालना, या मैं क्या एक खूनखार दरिंदा बन जाती हूँ, मैं तहस नहस कर देती हूँ सब कुछ, फोन पकड़ा हुआ उसकी शामत, फोन उधर उठा के फेंका, चीजें उधर उठा के करी, गाड़ी चला रही हूं तो वो स्पीडिंग कर दी, दरवाजे मार रही हूं, पैर मार रही हूं, चीखे मार रही हूं, सर अपने मार रही हूं दीवारों में, ये है मेरा रिएक्शन। खुद से पूछे, और घरों के अंदर के हालात कोई नहीं जानता, इन चार दीवारियों के अंदर बहुत राज होते हैं, हम अपने खुद एहतसाब करें और देखें कि वो तो माफ ही कर देते हैं, हम तो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते, हम किसी को क्या माफ करेंगे। और बाद में ये कह देना मैं बस मुझे तुम समझ लो ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है भाई, ये तो मैं पहले ही बता दूं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, तो दूसरे को ही अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो ही बस खामोश हो जाए, मैं नहीं हटूंगी, ये तो नहीं कोई तरीका। मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, ना कि लोगों को ये समझा देना है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। आगे वल्लदीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम, अच्छा वो फिर वो क्या करते हैं, वो माफ कर देते हैं, उनको गजबनाक होते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं छोड़ दो, जाने दो, दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं अल्लाह की खातिर। सुभान अल्लाह, अल्लाह की क्वालिटीज हमें पैदा फरमा दे।